XXX ट्रेन में सेक्स का हल्का फुल्का मज़ा मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया। जब हम दोनों रेलगाड़ी से अपने मामा के घर जा रहे थे, डिब्बे में बहुत भीड़ थी। हाय दोस्तों, मेरा नाम गरिमा है। मैं आपको XXX ट्रेन में सेक्स अनुभव सुनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार का और मेरा परिचय दे दूँ। मेरे ससुराल में कुल 4 लोग हैं, पति, ननंद और मेरे ससुर। मेरी सास की मौत मेरी शादी से पहले ही हो गई थी। ये तो रहा ससुराल का परिचय। अब मेरे घर का परिचय दे दूँ, इसलिए यह है कि मैं अपनी कहानी अपने घर से ही शुरू करूँगी, क्योंकि अपनी पहली चुदाई का अनुभव मैंने वहीं लिया था। मैं एक छोटे से शहर की एक बेहद मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। घर में पापा, मम्मी और छोटा भाई है। इसके अलावा कहानी में और भी किरदार आएंगे, जिनका समय समय पर मैं आपसे परिचय कराती रहूँगी। तो दोस्तों, जवानी का रंग मेरे ऊपर तेज़ी से चढ़ रहा था। मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। मैं तब तक लंड और चूत के रिश्ते के बारे में मुझे अच्छी तरह जान चुकी थी। स्कूल जाते वक्त जब मैं स्कर्ट पहनकर घर से निकलती, तो अक्सर आने जाने वालों की निगाहें मेरी गोरी गोरी जांघों पर ठहर जाती। छोटा शहर होने की वजह से स्कूल के लिए कोई बस नहीं थी, इसलिए मैं रिक्शे में स्कूल जाती। जब रिक्शे में बैठती तो जानबूझकर कभी कभी अपनी टांगों को थोड़ा सा फैला देती। इसके बाद सामने से आने वाले या खड़े लोग लार टपकाते हुए मेरी जांघों को घूरते, बड़ा मज़ा आता। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली ज्योति थी, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। हम एक स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे। मैं उसके घर जाती थी। उसके घर ज़्यादा जाने की वजह यह भी थी कि उसके पास लैपटॉप था। उसमें हम दोनों अक्सर पॉर्न मूवी देखती थी। मूवी देखते समय हमें एक दूसरे की छोटी छोटी चूचियों, जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उनको हंसी मजाक में दबा भी देती थी। कभी कभी चूत भी सहला देती थी। घर में मेरे छोटे भाई सोनू से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। क्योंकि मैं छोटी थी और हम दोनों दोस्तों की तरह रहते थे, एक दूसरे से हंसी मजाक भी खूब करते थे। हम दोनों अपने हर बात एक दूसरे से साझा करते, लड़के लड़कियों की बातें, कौन कैसा है, कौन किसको लाइन मान रहा है, यही सारी बातें। हम एक दूसरे को लेकर भी अक्सर मजाक करते थे। जैसे मुझसे पूछता, कॉलोनी में कौन कौन लड़के तुझे लाइन मारते हैं, तो मैंने कहा, तू कौन कौन सी लड़कियों को लाइन मारता है। उन लड़कियों में मेरी दोस्त ज्योति भी शामिल थी। सोनू अक्सर मुझसे पूछता था, तुम इतनी देर तक ज्योति दीदी से उसके घर जाकर क्या बात करती हो। मैं हंसकर टाल देती, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, ये बोल देती। तो वो पूछता, पढ़ाई के साथ कौन कौन से मज़े लेती हो, मुझे भी बताओ। मैं भी हंसकर जवाब देती, कुछ भी करती हूँ, तुझे क्या। ये कहता, ज्योति दीदी, ज्योति मेरी दोस्त थी इसलिए सोनू भी उसे दीदी कहता था, से कह दो कि मुझे भी बुला लिया करे, हम साथ में मज़े करेंगे। तो मैं कहती, तू उसे दीदी भी कहता और लाइन भी मारता है। इससे कहता, अरे वो दीदी तुम्हारी वजह से कहता हूँ, नहीं तो कौन सा मैं उसे बहन माने बैठा हूँ। तुमसे इतनी बार कहा कि ज्योति से मेरी बात करो, तुम अपने भाई की इतनी भी मदद नहीं कर सकती हो। इस पर मैं कहती कि खुद ही पटा लो ना। मैं कहती, तुम कौन सा कोई लड़का मुझे पटा कर देते हो जो मैं ज्योति को तुम्हारे लिए पटा दूँ। तो वो इस तरीके से बातें हम करते थे। हालांकि हम दोनों ने कभी सेक्स किया या इस तरह की कोई बात नहीं की, लेकिन अपने दोस्तों को लेकर मजाक करते रहते थे। वैसे मैं गौर करती थी कि सोनू अक्सर निगाह बचा बचा कर मेरी चूचियों पर निगाह मार ही लेता था, जिससे मैं मन ही मन हंस पड़ती थी। मैंने ये भी महसूस किया कि वह किसी न किसी बहाने से अपने शरीर को मुझसे टच कराने की कोशिश करता है। जब हम बालकनी में बात करते, तो मैं भी जानबूझकर बात करते करते कभी कभी अपने शरीर को सोनू से टच कराती। मुझे लगता था कि सोनू भी इस बात को समझता था, तभी वह कभी घर में अगल बगल से गुजरते हुए जानबूझकर अपना हाथ मेरी गांड से टकरा देता। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं में थी। हमारे छोटे मामा की शादी आई। शादी दिसंबर में थी, हमारा ननिहाल गाँव में था। दिसंबर में परीक्षा होने की वजह से शादी की तारीख ऐसी रखी गई कि हमारी परीक्षा ख़त्म हो जाए, ताकि मैं और सोनू भी जा सके। जिस दिन हमारी परीक्षा ख़त्म होनी थी, शादी उसके ही अगले दिन थी, जिस वजह से मैं और सोनू तो पहले नहीं जा सके, मगर मम्मी पापा कुछ दिन पहले चले गए। पापा को ऑफिस से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिली, तो उन्हें शादी के दिन ही पहुंचना था। खैर, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म होते ही मैं और सोनू उसी दिन शाम को अपने ननिहाल के लिए जाने लगे। जैसे मैंने बताया था कि हमारा ननिहाल शहर से दूर गांव में था, तो हमें ट्रेन से जाना था। मैं और सोनू तैयार होकर रेलवे स्टेशन आ गए। वहाँ से शाम 6 बजे की ट्रेन थी। पापा हमें स्टेशन पर छोड़ने आए। हमारे गांव के पास ज़्यादा गाड़ियां नहीं रुकती थी। खैर ट्रेन आ गई, लेकिन शादी और छुट्टियों की वजह से बहुत भीड़ थी। मगर एक डब्बे में हम चढ़ गए। डब्बे में भीड़ होने की वजह से बैठने की कोई जगह तो थी नहीं, इसलिए मैं और सोनू दरवाजे के पास ही एक जगह खड़े हो गए। हमारे पास केवल एक बैग था। जिस दरवाजे के पास हम खड़े थे, वहाँ किसी ने अपना बड़ा सा लोहे का बॉक्स रखा था, जिस पर दो बड़ी बड़ी अटैची और बैग एक के पर एक रखे थे, जिस वजह से उसने दूसरी तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया था। हमने भी उसी के ऊपर अपना बैग रखा और खड़े हो गए। बॉक्स के इस तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से सोनू ने कहा, दीदी तुम बॉक्स के दूसरी तरफ दरवाजे के पास चले जाओ। मैंने भी देखा तो बॉक्स और दरवाजे के बीच खड़े होने लायक जगह थी, तो मैं जाकर दरवाजे की तरफ खड़ी हो गई और आराम से बैग का सहारा ले लिया। चूंकि दरवाज़ा बंद था तो मैं आराम से वहीं खड़ी थी। जिस स्टेशन पर उतरना था वो हमारे शहर के करीब 70 किलोमीटर दूर था। पैसेंजर ट्रेन होने की वजह से करीब 2 घंटे लग जाते थे। वहाँ 7:30 बजे तक ट्रेन पहुँचती थी। फिर वहाँ से हमारे मामा का गांव 4 किलोमीटर दूर था, और वहाँ से गांव तक जाने के लिए किसी को हमें लेने के लिए स्टेशन तक आना पड़ता था। स्टेशन एकदम वीरान था, वहाँ पास कोई बस्ती नहीं थी। स्टेशन पर इक्का दुक्का ही कोई उतरता था, इसलिए पापा ने माँ को फ़ोन कर बता दिया कि स्टेशन पर कोई हम लोगों को लेने ज़रूर आ जाए। पापा ने हम दोनों को कहा, जब स्टेशन आने में 1/2 घंटा रह जाए तो माँ को फ़ोन कर देना, कोई ना कोई लेने आ जाएगा। ट्रेन चलने के बाद हम अपनी अपनी जगह पर एडजस्ट हो गए। ट्रेन चले 1/2 घंटा हो गया, अंधेरा गहरा हो गया। जहाँ हम खड़े थे वहाँ एक छोटा सा बल्ब था, जिसमें बस एक दूसरे को देख पर पाने की रोशनी आ रही थी। कोहरा होने की वजह से ट्रेन की स्पीड धीमी हो गई थी। ट्रेन में हवा लगने की वजह से ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए जो जहाँ खड़ा था धीरे धीरे जगह बनाकर बैठ गया। ठंडी हवा की वजह से सब ने दूसरा दरवाज़ा भी बंद कर दिया। सब ऊँग रहे थे। सोनू बॉक्स के दूसरे साइड में टॉयलेट के पास खड़ा था। थोड़ी देर बाद सोनू ने कहा, दीदी मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ। जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ एक आदमी और आ सकता था। मैंने कहा, अगर वहाँ दिक्कत है तो आ जा। सोनू बॉक्स के ऊपर चढ़ के मेरे पास आकर खड़ा हो गया, मगर जगह थोड़ी होने की वजह से हम एक दूसरे से सट कर खड़े थे। धीरे धीरे सोनू मेरे बगल से हटकर मेरे एकदम के पीछे आ गया, मगर थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि सोनू ट्रेन के हिलने का बहाना लेकर मुझसे बार बार कुछ ज़्यादा चिपक रहा है। पीछे खड़ा होने की वजह से वो मेरी गांड से चिपक रहा था। अब मैं समझ चुकी थी कि वो मेरे पास आकर क्यों खड़ा हुआ है। मैंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मेरे कुछ ना बोलने से सोनू की हिम्मत बढ़ गई और वो मुझसे चिपक गया। मैं उसके लंड का उभार महसूस कर रही थी। सोनू ने स्पोर्ट्स वाली लोअर टी शर्ट और ऊपर से जैकेट पहना था, मैंने कुर्ती और लेगिंग। सोनू का दबाव मेरी गांड पर बढ़ रहा था। अपनी गांड पर अपने भाई के लंड को महसूस कर मुझे भी अलग फीलिंग हो रही थी। वहाँ बैठे सब दुबक कर ऊँग रहे थे। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी और माहौल सेक्सी हो रहा था। अब सोनू भी समझ चुका था कि मुझे उसकी हरकतों से सहमति सी है। हम दरवाजे के पास खड़े थे। हमारे सामने एक बड़ा बॉक्स, उसके ऊपर 2 बड़े बैग, फिर उसके ऊपर हमारा बैग होने की वजह से हम दोनों के सीने के नीचे का हिस्सा छिपा हुआ था और उसका फ़ायदा हमें मिल रहा था। थोड़ी देर तो ऐसे ही चलता रहा। फिर सोनू थोड़ा पीछे हुआ और अपना लंड मेरी गांड से हटा लिया। तभी दोबारा वो मेरी गांड से चिपक गया। लेगिंग के ऊपर से मुझे लगा जैसे कोई कड़ी देख चीज़ मेरी गांड से रगड़ी जा रही है। मैं समझ गई कि उसका लंड है। ये समझते ही सोनू लंड बाहर निकाल कर रगड़ रहा है। मेरी चूत में पानी आ गया, एकदम चुदासी हो गई थी। मैं अपने सामने रखे बैग का सहारा लेकर हल्का सा आगे झुकी और अपनी गांड को थोड़ा पीछे किया। अब मेरी गांड और सोनू लंड के बीच में सिर्फ मेरी लेगिंग थी। सोनू ने धीरे से अपने हाथ से मेरी कमर को पकड़ लिया और लेगिंग के ऊपर से ही अपने लंड को मेरी गांड से सटा दिया। उधर मेरी चूत एकदम गीली हो चुकी थी। सोनू समझ रहा था कि मैं भी अब खुलकर मज़े ले रही हूँ। सोनू अचानक धीमा हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जो मेरी कमर पर रखे धीरे धीरे आगे की तरफ सरकाए। पहले तो मैं समझ नहीं पाई, मगर तभी उसके इरादे सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा। दरअसल सोनू ने अपना हाथ आगे लाकर मेरी लेगिंग पर रख दिया। पहले तो मैंने सोचा कि उसका हाथ पकड़कर रोकूं, मगर मैं इतनी मदहोश हो चुकी थी कि मना करने की हालत में नहीं थी। तभी सोनू ने अपना हाथ मेरी कमर पर रखा और दोनों तरफ से उसके हाथों की उंगलियां मेरी लेगिंग के अंदर चली गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। सोनू थोड़ा सा पीछे हटा और धीरे धीरे मेरी लेगिंग और पैंटी को नीचे खिसकाने लगा। लेगिंग टाइट होने की वजह से थोड़ा जोर लगाना पड़ा और आखिर उसने लेगिंग पैंटी को खींचकर घुटने तक कर दिया। अब मेरी गांड नंगी हो चुकी थी। सोनू ने अपने हाथ से मेरी गांड के दरार को फैलाया और अपने लंड को डाल दिया। जैसे ही सोनू का गर्मा गर्म लंड मेरी गांड से टकराया, मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। सोनू ने दोनों हाथों से मेरी कमर को पकड़ा और झुककर हल्का हल्का अपनी कमर को हिलाने लगा। हालांकि मैं कई बार बैंगन और मूली अपनी चूत में डाल चुकी थी, मगर आज पहली बार कोई लंड मेरी चूत से टकरा रहा था। मैं भी आगे झुककर अपना सर बैग पर रखा और अपनी गांड को उठाकर हिलाने लगी। अब सोनू ने मेरी कमर को पकड़कर अपने लंड को मेरी चूत से रगड़ना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरी नसें फटने जा रही हैं। मैं और तेज़ी से गांड को हिलाने लगी। फिर सोनू ने अचानक स्पीड बढ़ा दी और मेरी गांड को अपनी कमर से चिपका लिया। तेज झटके लगने लगे और थोड़ी ही देर में उसका गर्मा गर्म विरिय मेरी चूत और जांघों तक निकलने लगा। मुझे भी लगा जैसे शरीर अकड़ गया और मेरी चूत ने भी पानी छोड़ दिया। हम दोनों साथ झड़े। सोनू अपना सर मेरी पीठ पर रख तेज़ी से सांस ले रहा था। मैं भी निढाल हो रही थी। उधर सोनू के लंड का रस और मेरी चूत का रस दोनों मेरी जांघों तक बह रहे थे। करीब 5 मिनट बाद सोनू खड़ा हुआ और उसने अपने रुमाल से धीरे से मेरी चूत और जांघ को साफ किया। XXX ट्रेन में सेक्स के बाद मैं भी सीधी खड़ी हो गई और धीरे से अपनी पैंटी और लेगिंग को ऊपर कर लिया। हमने टाइम देखा तो 8 बजे थे। ट्रेन अभी भी चल रही थी, मगर कोहरे की वजह से लेट हो गई थी। हमने वहाँ बैठे बाकी लोगों पर नज़र दौड़ाई तो देखा सब सो रहे हैं। फिर करीब 15-20 मिनट तक मैं और सोनू चुप रहे। थोड़ी देर बाद स्टेशन आया, तब जाकर सोनू ने कहा, देख कर आता हूँ। मैंने कहा, ठीक है। सोनू ने बॉक्स को पार कर सामने वाले दरवाजे को खोल कर देखा, बोला, हमें अगले स्टेशन पर उतरना है। ट्रेन फिर से चल दी। करीब 15 मिनट बाद हम उतर गए। दोस्तों, ज़रूर बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। मज़े लेते रहिए।